आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इन्वायरमेंटल साइंस, और हम बात करेंगे जल एवं ऊर्जा संरक्षण पार्ट टू। लेकिन सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे साथ बनी हुई है मिस नीलम गुप्ता जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पर्यावरण विज्ञान के लेसन नंबर 18 यानी जल और ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत हम बात करेंगे, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, और ये आपका मॉड्यूल 5 है और जिसका टाइटल है पर्यावरणीय संरक्षण, और इसी का ये लेसन 18 है। तो इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे कि ऊर्जा है क्या, मानव के समाज के लिए ऊर्जा का क्या प्रयोग है, किस कहाँ कहाँ हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, प्राप्ति स्रोत क्या हैं, और जब ये ऊर्जा जो हम कंज्यूम करते हैं या उपयोग कर रहे हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा उपयोग करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम इसका संचालन कुशलतापूर्वक एफिशिएंसी किस तरह से दिखाएं कि ये आगे तक हमारे पीढ़ियों को मिलती रहे। तो हमें घर पर, अपने वर्क प्लेस पर, ट्रांसपोर्ट में और हमें इंडस्ट्री में भी ऊर्जा कुशलता का जो संचालन है, कुशल संचालन को बढ़ाना है, उसके बारे में बात करेंगे। और देश में कौन कौन से ऊर्जा संरक्षण के प्रोग्राम हो रहे हैं, कार्यक्रम क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा क्या है, यानी हमें कोई भी काम करना हो, एक्टिविटी करनी हो, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कुछ शक्ति चाहिए, कोई पावर चाहिए। तो हम परिभाषित करते हैं ऊर्जा को कि कार्य करने की जो क्षमता है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, और ये जो ऊर्जा है इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं, परिवर्तित रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि एक जो ऊर्जा है वो एक बार इस्तेमाल हो सकती है, उसको पुनः प्रयोग नहीं है, यानी हमने अगर जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया उससे को दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो ख़त्म हो जाती है और उसका दोबारा प्रयोग नहीं। जैसे कि अगर मान लो पोषक तत्वों को हम दोबारा नहीं, न्यूट्रिएंट जो हैं वो अगर एक बार एब्जॉर्ब हो गए, ख़त्म उपयोग में ले लिए गए, तो उसको हम दोबारा पुनरावर्तित नहीं कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि कितने तरह के ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जिन्हें कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जो कि हमारी लाइफ टाइम में दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये भी ऊर्जा के जो लॉ रूल्स हैं, नियम हैं, उनके हिसाब से ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा हमारी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, लेकिन पुनः चक्रण नहीं होता है उसका। और अगर ये तो हमने नॉर्मल बात की, दूसरा अगर हम बात करें कि प्रकृति में जो ऊर्जा का चक्रण है वो किस तरह से होता है, तो जो प्रकृति में ऊर्जा का चक्रण होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो होता है फूड चेन के माध्यम से। तो ये बात हुई हमारी ऊर्जा का चक्रण क्या है और कितने तरह की ऊर्जा होती है। अब हम बात करेंगे कि समाज द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऊर्जा को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, क्या क्या प्रयोग हैं। देखो, अगर हम अपनी और दूसरे जीवधारियों की बात करते हैं तो हमें अपने जो भी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, और जो भी हमारा फिजिकल वर्क है, उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जीवधारियों को, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? उसको ऊर्जा मिलती है भोजन से, और ये जो भोजन में जो ऊर्जा मिलती पाई जाती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी के यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, जो कि केमिकल कंपाउंड है। और ये जो यौगिक है, इसका संश्लेषण कब होता है? जब हमने भोजन खाया उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। और ये जो ऑक्सीकरण है वो हमारी सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान ही ये होता है। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि प्रकृति में किस तरह से होता है, तो प्रकृति में ये ऊर्जा जो है फूड चेन के रूप में ट्रांसफर होती है। और प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का वो कौन है? सन है, यानी सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो सोलर एनर्जी एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी पर उसको वो बराबर मिलती है, कोई चार्ज नहीं है, सभी को इक्वल मिल रही है। और जो पौधे हैं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे जीवधारी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है वो सिंथेसिस रूप में करते हैं. और जो पौधे हैं, ग्रीन, खासतौर से ग्रीन प्लांट ही इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा. इसीलिए हम पौधों को उत्पादक भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं. और जो पौधे हैं उनको जब अन्य जीव, यानी शाकाहारी जीव कहते हैं, खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, नहीं, जो पौधों पर, हर्ब्स पर निर्भर रहते हैं, तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं. और जो ये शाकाहारी जीव हैं उन्हीं को जो है मांसाहारी जीव खाते हैं. तो इस तरह से ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता जाता है. और हम पहले भी बात कर चुके थे कि ऊर्जा का 10% रूल की बात हमने की थी, और किस तरह से पोषण स्तर हैं उनकी भी बात की थी. प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर एंड ओमनिवोर्स. तो ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है, नष्ट तो नहीं होती है क्योंकि वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है. और उसमें 10% हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है. और मानव खाली ऊर्जा का प्रयोग अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए नहीं करता है, लेकिन दूसरे भी और काम हैं जिसके लिए चाहिए ऊर्जा. अगर सपोज घर से शुरुआत करें तो हमें खाना पकाने के लिए ऊष्मा की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है. और बिजली की जो ज़रूरत है, आप देखते हैं कि उसके बगैर तो लाइफ ही नहीं है. आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, वो सब बिजली से ही चलते हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, कूलर हो, पंखे हो, एसी हो, कंप्यूटर, कुछ जितने भी डिवाइसेज हैं आप देख सकते हैं, तो वो सब में उस बिजली की आवश्यकता पड़ती है. और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है. और ट्रांसपोर्टेशन में हम बहुत तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी है, बस है, ट्रेन है, ट्रक है, एरोप्लेन है. तो इनको जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलती है? इनको ऊर्जा मिलती है पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, और नेचुरल गैस यानी CNG के थ्रू भी, जैसे ईंधन है, उनकी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि ये व्हीकल चलाए जाते हैं. और अगर सपोज़ आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो सपोज़ आप 10वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो और ग्राउंड फ्लोर पे आपका वाटर सिस्टम है, तो वहाँ से पानी कैसे जाता है? तो वो मोटर चलती है, नहीं, मोटर चलाने के लिए, पंप करने के लिए भी हमें बिजली, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. और ऊर्जा का बहुत सभी इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न प्रक्रियाओं को करने के लिए प्रयोग होता है. और इसी से हमारे जो बहुत सारे पदार्थ जो हैं, उपयोगी पदार्थ, उनका निर्माण होता है. हम एग्रीकल्चर के फील्ड में भी उपयोग करते हैं. कैसे? हमें सिंचाई के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, या और भी जो खेतों में काम आने वाली मशीनें हैं, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव आदि के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. इसी तरह से ऊर्जा का प्रयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में भी होता है. कैसे? जो बिजली के जो स्टेशन हैं उसमें टरबाइन को चलाने के लिए भी हम को ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो मानव जाति के लिए एक बहुत ही प्रीशियस, वैल्यूएबल है, संपदा है. अब हम बात करते हैं, अभी ये हमने बात की जो समाज द्वारा ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उस पर बात की. अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा, कैसे हमने शुरू में बात की थी कि ऊर्जा हमें के जो स्रोत हैं वो दो तरह के हैं, एक तो कन्वेंशनल हैं और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक और गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं हम. तो जो परंपरागत स्रोत हैं वो हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स. और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनाने में लाखों वर्ष लगे, तो वो आज हमें इस रूप में मिल रहे हैं. और इनका, क्योंकि बनने में इनको लाखों साल लगे हैं, तो इनका नवीकरण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे जब वो दोबारा बनेंगे जब, तो लाखों साल लग जाएंगे. तो जीवाश्म जो है क्या है? उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर विद्यमान थे और आज नहीं है. और ख़ास तौर से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बेसिकली प्लांट्स ही हैं, पौधे ही हैं, जो कि पृथ्वी के नीचे दब गए थे और पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए थे। और आज जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं उनको हमें खोद कर निकालना पड़ता है खदानों से। और किन रूपों में ये निकलते हैं, जो जीवाश्म ईंधन जो निकला वो ऊष्मा के रूप में ऊष्मा निष्कासित होती है उससे। और ये जो है कई तरह के हो सकते हैं, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस के रूप में मिलते हैं हमें, क्योंकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो हम यहाँ जस्ट थोड़ा सा ही लेंगे। कोई कोयला क्या है, एक वो सॉलिड फॉर्म है, और खनन के बाद क्या करते हैं, जब वो निकाल लिया जाता है खदान में से, तो उसको ट्रकों के ज़रिए और ट्रेन्स के ज़रिए, खासतौर से कैरेज ट्रेन जो होती हैं उनके ज़रिए दुनिया मतलब देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। और ख़ास तौर से जो हमारे यहाँ कोल माइंस हैं वो बिहार की रानीगंज, झरिया और झारखंड के क्षेत्रों में, धनबाद, ठीक है, तो झारखंड और बिहार में ही, ये खासतौर से झारखंड में ही ज़्यादा है खदान कोयले की। और अब दूसरा जो है फॉर्म इसका फॉसिल फ्यूल का, वो है तेल यानी ऑयल। ऑयल क्या है, ये एक लिक्विड फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर कुएं खोदे जाते हैं, गहराई में कुएं खोदने के बाद में उसमें पाइपलाइंस के थ्रू इसे बाहर खींचा जाता है और निकाला जाता है कह सकते हैं। और इसको फिर बाद में रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जो कि टैंकर्स को पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। और जो तेल है यानी उसका जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं एयरप्लेन चलाने में, गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भारत में जो है कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आसाम का डिगबोई ऑयल फील्ड है, वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी तट है उस पर भी है, बॉम्बे हाई में भी मिलता है, और अभी कुछ समय पहले शायद जैसलमेर में भी कुछ ऑयल फील्ड का जो है तेल के कुएं मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। गैस को दिमाग में आने से आपको, जैसे गैस की बात करते हैं तो हमारे को याद आता है एलपीजी, यानी घर में जो हमारे गैस इस्तेमाल होती है वो क्या है, विभिन्न प्रकार की जो ये नेचुरल गैस है वो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण ही है, जिसे कि हम भोजन पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है वो होती है हमारी एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसे कैसे, हम या तो पाइपलाइन के थ्रू या फिर सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है और जिसे आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और जो वाहनों के लिए इस्तेमाल हो रही है गैस वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कि हम बसों में, स्कूटर्स में, ऑटो रिक्शा में, टैक्सीज में, तो बेसिकली कह सकते हैं तो हम पब्लिक कन्वेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो तेल है और जो गैस है वो क्या है कि वो ना फाइटोप्लैंकटन यानी प्लवकों के ही जीवाश्म हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले जीवित थे लेकिन जब वो मर गए, डेड जो थे वो समुद्र में के नीचे तलहट में चले गए, और वर्षों के बाद ऊष्मा और दबाव के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में कन्वर्ट हो गए और समुद्र की निचली सतह के नीचे पाए जाने लगे। और लगभग 50-60 साल पहले तो कोई ऐसा सोचता भी नहीं था कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा रहा कि हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये अगर जीवाश्म ईंधन ख़त्म हो गए तो आगे क्या होगा। तो इसके लिए, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई और हमारा उसके कारण ही हमने ज़्यादा उसको निकालना शुरू किया, कंज्यूम करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा। और इसीलिए आज जो पर्यावरणविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम इसी स्पीड से इस्तेमाल करते रहे तो शायद अगले 100-150 सालों में हमारा ये फॉसिल फ्यूल्स का जो स्टोर है, भंडार है, वो ख़त्म हो सकता है। और इसीलिए सोचना पड़ा कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं यानी नॉन कन्वेंशनल स्रोतों के बारे में बात करना पड़ा और उनका इस्तेमाल करने पर जोर भी दिया जाने लगा। तो ये जो वैकल्पिक स्रोत हैं वो अभी बहुत ही लिमिटेड हम इस्तेमाल करते हैं, और ये कौन कौन से स्रोत हैं? एक तो सोलर एनर्जी है, दूसरा विंड एनर्जी है, तीसरा हाइडल एनर्जी है, चौथा टाइडल एनर्जी है, और पांचवा आपका थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, और बायोमास यानी जो बायोगैस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अभी, कुछ कहीं कहीं पर ये इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो संसाधन है वो नवीकृत हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सोलर एनर्जी है, वो सूर्य से जब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रकृति में ये व्यापक रूप से पाई जाती है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, और ये मुफ्त में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। और इसका जो सीधे रूप में अगर देखें तो आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह, चाहे घर हैं या ऑफिस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या ऑफिस हैं, या आपके किसी पार्क में देखें तो सोलर पैनल आपने देखे होंगे लगे हुए, तो वो सोलर पैनल से ही सौर ऊर्जा को हम सीधे इस्तेमाल के लिए घर में लाते हैं। जैसे अगर घर में है तो सूर्य की किरणों को हम सोलर पैनल के थ्रू घर में ऊष्मा लाने के लिए करते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो घरों को सोलर रेडिएशंस के द्वारा मिलती है, और जो सोलर टीवी हैं उसमें सोलर फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और सोलर थर्मल एनर्जी जो है हम सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए भी करते हैं, और इस तरह से हम सोलर एनर्जी का इंडस्ट्रीज़ में भी उपयोग करते हैं। और जब अगर हम बात करें तो घरों में भी कई जगह जहाँ प्रॉपर सूरज की गर्मी रोशनी ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा मिल रही है, तो वहाँ आपका पानी गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, लाइटिंग के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड टाइप जो एनर्जी है वो है हमारी विंड एनर्जी। ये भी एक पारंपरिक स्रोत है, और घरेलू कार्यों के लिए, खेतों के लिए, सिंचाई के लिए पानी को फेंकने, पानी को सिंचाई के मतलब फील्ड में डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये इसमें जो होता है, जो वायु की गतिज ऊर्जा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बाद हम इसे प्रयोग में लाते हैं। उसी तरह से जो हाइडल एनर्जी यानी जल ऊर्जा है, उसमें क्या होता है कि कई सारे जो बांध हैं उनमें क्या होता है, एक खास ऊंचाई पर जाके नदियों के पानी को संचित किया जाता है, इसीलिए उनका निर्माण होता है उस विशेष तरीके से। और तब इसमें जो संचित पानी का जो भंडार है, पानी में की जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और ये कैसे होती है, बहुत तेज जल प्रवाह के द्वारा ये परिवर्तित होती है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये टरबाइन पर इस पानी के बहाव के द्वारा पहुँचते हैं, और उसके साथ ही ये जो पानी के भंडार की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो संभावित ऊर्जा है पानी में भी तो काफ़ी शक्ति है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी घरों में जो आने वाली बिजली है उसका कुछ परसेंट हमारा हाइडल एनर्जी से भी मिलता है, पानी से भी मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी समुद्र की, ये समुद्र में जो लहरें आती हैं उसमें भी एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कि वायु से निकलती है, वायु से जो ऊर्जा निकलती है, और इस जो वायु है उसके द्वारा ही सौर ऊर्जा से ये जो है वायु सौर ऊर्जा से संचालित होती है, और ज्वारीय ऊर्जा को यानी टाइडल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करके इस्तेमाल करते हैं। अब आती है जियोथर्मल एनर्जी की बात। तो ये जो ऊष्मा है ये वो ऊर्जा है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद है, और पृथ्वी के इस भाग की जो ऊष्मा है आसानी से उपलब्ध है, और इसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये टेक्निक थोड़ा सा महंगी है, लेकिन अभी इसका भी इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। अब जो अगली टेक्निक आ रही है वो है हमारी बायोमास से प्राप्त जो ऊर्जा है, और ये बायोमास क्या होता है, यानी जो प्लांट्स के और रेजिड्यू हैं, जो भी जो पादप सामग्री है जिनका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्माण हुआ था, और इसमें से हम कुछ को क्या करते हैं, जैसे लकड़ी को हम जला लेते हैं, कृषि के अपशिष्ट जो हैं उनको भी जला लेते हैं, उसके कारण द्वारा हम उसका ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और बायोमास का जो ऊर्जा के उत्पादन में भी उपयोग करते हैं और ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया करने वाला जो लिक्विड यानी मीथेन गैस है, एल्कोहल के रूप में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट हैं, प्लांट की सामग्री है, इसीलिए हम इनको बायोफ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, और जब तक ये उपलब्ध रहेगी, कब तक रहेगी, जब तक कि पृथ्वी पर पौधे पाए जाएंगे, और पृथ्वी पर पौधे तो हमेशा ही रहेंगे, तो ये हमें हमेशा ही मिलती रहेगी। और आज ईंधन की लकड़ी के लिए जो सप्लाई करने के लिए कुछ पौधे को जो तेजी से उग सकते हैं, उस तरह के पौधे उगाए जाते हैं, जैसे कि पाम ट्रीज हो गए, जट्रोपा हो गया, उन्हें खास तौर से ईंधन के रूप में उगाया जाता है। और ईंधन के रूप में ये बायोमास का एक और प्रयोग है, जो कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, जो फसल के अवशेष हैं या फिर जो पशुओं के एक्सक्रीटा है, उनको हम एकत्रीकरण करके, यानी हम इसमें बायोगैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बचता है रेजिड्यू उसको हम फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खेतों में अपनी उपज बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट जो है कम बढ़ाने के लिए उस भूमि में। तो ये जो बैक्टीरिया द्वारा जो जैविक अपशिष्ट हैं, जैसे जिसमें सीवेज हो गया, मल जल और जो ठोस बायोमास है, तो उसको हम बायोगैस जैसे बायोफ्यूल्स के रूप में परिवर्तित करते हैं। और इसको बनाने के लिए जो इसका जो उपकरण है, वो बायोगैस का जो है बायोगैस डाइजेस्टर है, जो कि एक बड़े से बर्तन के आकार का होता है, जिसमें ये प्लांट और एनिमल के जो एक्सक्रीटा हैं, गोबर है, ये सब इसमें पौधे के अवशिष्ट हैं जो सब उसमें डालते हैं, जो कि उसमें कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जब फर्मेंटेशन किया जाता है, जिसके चलते बायोगैस बनती है, और जिसका उपयोग हम खाना पर पकाने के लिए घरों में करते हैं, या घर को गर्म रखने के लिए करते हैं। और ये जो बायोगैस है, वो बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण होता है, और मीथेन को जो है खाद के अवायवीय पाचन की प्रक्रिया द्वारा, और इन्हीं से संबंधित जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, उनके माध्यम से अपशिष्ट मल जल को उपचारित करने करके प्राप्त किया जाता है। और जो हम बात कर रहे थे कि ईंधन की सप्लाई करने के लिए कुछ प्लांट्स उगाए जाते हैं, और कुछ फैमिलीज हैं, प्लांट फैमिलीज, जिनको भी आजकल कॉमर्शियली उगाया जा रहा है, जैसे SLPDAC फैमिली हो गई, जिसमें कैलोट्रोपिस मसीरा है, यूफोरबियासी फैमिली है, फेबियसी है, एस्टरेसी है, सोमनी डीएसी है, इसके पौधों को भी हम ईंधन के तौर पर उगाते हैं, जिसमें अगर बात करें नाम की, तो कैलोट्रोपिस प्रोसीरा हो गया, यूफोरबियासी है, एंटी सेफाइलेटिका, कैपीफेना, फेरा लॉन्ग लॉन्ग स्टोरफिल एंड पार्थिनियम अर्जेंटम अर्जेंटेटम, ये कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जिन्हें कि उगाया जाता है। और अगर हम बात करें तो आजकल हम इथेनॉल का इस्तेमाल भी करने लगे हैं पेट्रोल के जगह पर, और उसको भी हम मोटर व्हीकल चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा, और ये जो एथेनॉल मिलता है कहाँ से मिलता है, जो गन्ना है, सॉर्गम है, या मेज़ है, या चुकंदर यानी बीट रूट के फर्मेंटेशन से और डिस्टिलेशन के माध्यम से इसे हम प्राप्त करते हैं, और इसको हम प्योर फॉर्म में ही इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। और यानी कि इससे हम मोटर गाड़ी के इंजन को पेट्रोल की जगह पर चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यानी एक ये अल्टरनेटिव फ्यूल आ जाए है, जो कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने की स्थिति में आ जाएगा। दूसरा एक हम और बात करते हैं बायोडीजल में, क्योंकि भारत में बहुत सारे तेलीय पौधे हैं, उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन तेल बायोडीजल को जो है इन्हीं वनस्पति के से निकाला जाता है। और जो बायोडीजल प्रदान करने वाली जो पौधे हैं, उनमें दो तीन नाम खास हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जट्रोपा, कर्कस यानी रतनजोत, कैलोफिलम, आइनोफिलम यानी नाग चंपा, और हेविया ब्राजीलेंसिस यानी रबर। ये बायोडीजल उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, लेकिन इसमें कोई पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मौजूद है, और ये पेट्रोलियम की जगह पर सामान्य इंजनों में एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी की, यानी कि ऊर्जा की कारगरता में किस तरह से विकास किया जाए, कैसे, कहाँ कहाँ हम किस किस क्षेत्रों में कर सकते हैं। हमने से बात की, हमें वर्क प्लेस में, हमें घर में, हमें ट्रांसपोर्ट में, हमें एनर्जी एफिशिएंसी दिखानी, यानी ऊर्जा बचाने के जो भी संसाधन इसमें हम कर सकते हैं, जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें। तो सबसे पहले हम घर के बात करते हैं, क्योंकि जिस किसी भी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं तो अपने घर से ही करनी होती है। तो जैसे हम घर में, अगर मान लो हमारे चार कमरे हैं, चारों में लाइट भी होगा, पंखा भी होगा, एसी भी होगा, ट्यूबलाइट भी होगी, तो हम घर में अपने बिजली को व्यर्थ या बर्बाद नहीं होने दें। और जब उनका उपयोग नहीं हो रहा है, अगर मान लो एक रूम में आप बैठे हैं, तो बाकी तीन रूम की लाइट्स और पंखे हैं वो सब बंद कर दें, उन्हें बुझा दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। क्योंकि जब हम एक ही स्थान पर एक साथ बैठकर उस काम को कर सकते हैं, अलग रूम का इस्तेमाल ना करें, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिजली की खपत है वो कम होगी और हमारा बिल भी कम आएगा। खाना पकाने के लिए हमें एनर्जी फ्यूल एफिशिएंट हर्थ यानी चूल्हों का प्रयोग करना चाहिए, और धुआं छोड़ने वाले जो स्टोव हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि समय समय पर जो भी कुकिंग डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे गैस का चूल्हा हो, उसकी को सफाई करना ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर मान लो कहीं हमको जो हम गैस या उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और हमें मान लो लकड़ी पे खाना बनाना है, कोयले का इस्तेमाल करें, तो हम लकड़ी जलाने के लिए सूखी टहनियों को काटें, ना कि हरे भरे पेड़ को हम काटें। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसको काटें और हम उसका इस्तेमाल करें। खाना बनाते समय जब बात की जाती है, तो तेज आंच में खाना ना बनाएं, एक तो वो जल जाता है, स्वादिष्ट नहीं बनता है। इससे क्या होगा कि धीमी आंच पर अगर हम खाना बनाएंगे तो एक तो खाना गैस की बचत होगी, और दूसरे जो खाने के जो पौष्टिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं। अगर हम बात करें, अगर हमें किचन में जाके खाना बनाना है, तो हम ये ना करें कि कढ़ाई चढ़ा दी या बर्तन कुछ चढ़ा दिया, पैन चढ़ा दिया या बर्तन है, उसके बाद में हम सब्जी काट रहे हैं या तैयारी करें। हमें पहले ये करना चाहिए कि सबसे पहले हमें सारी तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या बनाना है, क्या कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, जो भी करना है उसको करने के बाद ही आप खाना बनाने जाएं, तो आपका गैस जो है बचेगा, यानी हम फिर से ऊर्जा को बचा पाएंगे। अगर हमें खाना गर्म करना है या पकाना है, तो हम कोशिश करें कि अगर हम कर सकते हैं तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी सोलर कुकर के द्वारा हम अपना खाना बना सकते हैं। अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, तो हम अपने सिंगल गाड़ी ना लेके अकेले अकेले गाड़ी में ना आए, बल्कि हम दूसरे लोग को भी ले आए, यानी कारपूल कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक ही जगह आने वाले चार लोग भी उसमें आ सकते हैं, तो ईंधन की बचत होगी। दूसरा, ऑफिस के जो भी अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप उनको एक्स्ट्रा जो भी लाइट्स हैं उनको आप ऑफ़ कर दें। और जब आप ऑफिस से निकल रहे हैं, तो कोशिश यही करें कि आप ये ना वेट करें कि कोई दूसरा बंद करेगा तो हो जाएगा, आप खुद ही अगर उसे बंद करके निकलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये अच्छी आदत है, इससे पैसा भी बचेगा और ऊर्जा जितनी बचेगी उतना हमारे लिए उपयोग में आएगा। क्योंकि अक्सर ये सोचा जाता है कि ऑफिस की जलने तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल तो वहाँ भी पे करना पड़ता है, क्योंकि बिल आप पे नहीं कर रहे, लेकिन आपका संस्था तो पे करेगी ना। तो इसलिए ये अच्छी आदत है कि आप अपने वर्क प्लेस में भी लाइट्स को ऑफ करके रखें, और जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के फील्ड में हम कैसे कर सकते हैं। तो हम अपनी इंडिविजुअल गाड़ी ना निकाल कर अगर हम पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जहाँ पर मेट्रो की सुविधा है मेट्रो का इस्तेमाल करें, या बस की सुविधा है वहाँ बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी हम एनर्जी को बचा पाएंगे। और जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का भी एक स्पीड होता है, वो भी लिमिटेड होता है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा या जो नॉर्म्स डिसाइड हैं اسی کے حساب سے آپ گاڑی چلائیں, یعنی گاڑی کی جو اسپیڈ ہے اس کو تھوڑا کم ہی رکھیں, کیونکہ زیادہ تیز گاڑی چلائیں گے تو اتنا ہی ہمارا فیول کنزمپشن بھی بڑھتا ہے. اگر گاڑی کا چوک صرف ضرورت پڑنے پر ہی اپیوگ کریں, چوک کو ترنت اس سمے بند کر دیں جب انجن گرم ہو جائے, اور اگر گاڑی چالو کرنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو انجن کو چالو کرنے کے لیے کلچ دبائیں, یعنی بار بار کلچ بھی نہیں دبایا جائے. یدی ایندھن کے ٹینک یا واہنوں میں اگر کچھ ایگزاسٹ لیک ہے کر رہے ہیں تو اس کی ترنت مرمت, یعنی لیکنگ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے واٹر کنزرویشن میں بات کیا کہ جو ٹیپ ہیں یا ان سب کو بھی لیک پروف ہونا چاہیے. ٹریفک سگنل پر اگر مان لو سپوز ریڈ لائٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنے ویکل کو بند کر دیں, ان نیسیسری اسے چالو نہیں رکھیں تاکہ جو انرجی ہے وہ بچ جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں سی ایف ایل. گھروں میں ہم نا سی ایف ایل کا استعمال کرتے ہیں, ایل ای ڈی کا بھی استعمال کرتے ہیں آج کل. پہلے تو یہ جو فلورسنٹ جو لائٹ ہیں اس میں جو ہے مرکری ایک مین ایلیمنٹ ہوتا ہے جو بلب کو پرکاش کا کشل سروت بنا لیتے ہیں, اور سی ایف ایل یا ایل ای ڈی کا استعمال کرنے سے ہمیں کم سے کم 95% کم بجلی کا استعمال کرتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے بجلی کی مانگ بھی کم ہوتی ہے. اسی لیے گھروں میں آج کل یا آفیسز میں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نارمل بلب ہوتے ٹنگسٹن بلب ہوتے تھے ان کی جگہ پر سی ایف ایل یا ایل ای ڈی بلب نے لے لیا ہے, اور اس سے ہمارا بجلی کا بل بھی بچتا ہے. اور اس میں سی ایف ایل کو میں بہت ہی کم مرکری کی ماترا استعمال کیا جاتی ہے, 5 mg ہوتی ہے آن ایوریج. اور ادھکتر لوگوں جیسے میں نے بات کی کہ بجلی کے بل میں کٹوتی ہو گئی ہے, اور بہت سارے گورنمنٹ اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں آفیسز ہیں وہاں بھی اب سی ایف ایل کا ہی استعمال یا ایل ای ڈی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ بجلی کے جو اپکرن ہیں ان کا بھی ایویلیوشن ہوتا ہے, تو اس میں نا ریٹنگ کرتے ہیں 1 to 5 star ریٹنگ کا. تو یہ کیا سے تھا, کس طرح سے یہ شروعات ہوئی تھی, تو مارچ 2002 میں ارجا سنرکشن ودھیک کے انترگت ارجا منترالے نے ارجا سنچالن کے کا ایک آفس یعنی ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہمارا, ایک جو تھا بیورو آف انرجی ایفیشنسی نے بی ای کی شروعات کی تھی, اور یہ جو ہے بھارت سرکار کی ایک ایجنسی ہے. اور اس کی بھومیکا کیا ہے, مکھیہ بھومیکا یہ ہے کہ یہ ان کاریکرموں کو وکست کرتی ہے جو بھارت میں ارجا سنرکشن اور کشل ارجا پریوگ کو پروتساہن دیں گے. جیسے کہ بھارت میں سرکار نے یہ انیوارے کیا کہ جنوری 2010 سے جتنے بھی الیکٹرک اپکرن ہوں گے ان کو بی ریٹنگ دی جائے, اور بی اسٹار کشلتا کے پرتیکوں کو لیبل کے روپ میں لیبل کیا جاتا ہے, نرمت کیا گیا. وہ وبھن جو اپکرن ہیں الیکٹرک اپلائنسز ہیں ان کو ایک ہی ماپ دنڈ استھاپت کرنے کے لیے ضروری تھا, اور ایک ہی ماپ دنڈ پریکشن کی استھتیوں میں ارجا کے اپبھوگ کو وہ سنکیتت کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو اس میں اسٹار ریٹنگ ہوتی ہے بی ای کا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سال میں کتنی ارجا استعمال کرے گا, اور یہ جو اسٹار ریٹنگ ہے پرنالی وہ اگر اسٹار دیا جاتا ہے جس میں کہ بہت کم ارجا افیشینٹ کشاگرتا ہے اس کے لیے, اور جو سر اتیادھک ارجا کشاگرتا والے ہوتے ہیں یعنی اس کو ہم 5 star ریٹنگ دیتے ہیں, اور یہ مطلب 1 to 5 star ریٹنگ تک ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1 star ریٹنگ کا اپلائنس اور 5 star ریٹنگ کا اپلائنس میں کیا ہے کہ وہ کتنی ارجا بچا رہا ہے, یہ اس پر نربھر کرتا ہے. اسی طرح سے وہ اسٹار ریٹنگ کی جاتی ہے. اور آپ کے گھروں میں اگر اب استعمال کر رہے ہوں گے جتنی بھی چیزیں تو اس میں یہ ریٹنگ اوشیہ ملتی ہے, چاہے وہ فریج ہو, اے سی ہو, آپ کا واشنگ مشین ہو, لائٹنگ سسٹم ہو, یہ سبھی اپنی ارجا کشاگرتا کو سنکیت کرنے کے لیے جو اسٹارس کے استر کا استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کے کھیتر میں ٹرانسپورٹ کے کھیتر میں انرجی ٹرانسپورٹ اور انرجی کا ریلیشن ہے کہ جو یاتایات کے کھیتر میں گرین ہاؤس گیسوں کی بڑھوتری میں سب سے ادھک وردھی ہوئی ہے, اور اس میں گرین ہاؤس گیسز کون کون سی ہیں, یہ ہماری ہوتی ہیں آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ, میٹھین اور نائٹرس آکسائڈ ہوتے ہیں, سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو 83% جو ہیں جو ویکل سڑک پر چلتے ہیں اس کے کارن نشکاشت ہوتے ہیں, اور اس میں خاص طور سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا زیادہ ہوتی ہے. और ऊर्जा संबंधी अपशिष्टों को कम करने के लिए ही ऊर्जा कुशाग्रता की बढ़ोतरी करके कम ऊर्जा के प्रयोग द्वारा अधिक मात्रा में उपयोगी करना जरूरी होता है, और इस ऊर्जा अपशिष्ट की मात्रा कम करने के लिए कई आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं हमें। यानी कि जो यातायात में ऊर्जा के संरक्षण का जो बेहतरीन तरीका है कि जो मोटर व्हीकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईंधन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। हाइब्रिड संकरित गैस विद्युत के इंजन व हाइड्रोजन से चलने वाले जो फ्यूल सेल है उनसे जो चलित बिजली है कि वाहन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप प्रमोट किया जा रहा है और वो बन भी रहे हैं और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। फ्यूल सेल आंतरिक दहन इंजनों से लगभग 2 गुना ज़्यादा अधिक एफिशिएंट है। इसमें इनके उनमें कोई चलते पुर्जे नहीं है जिससे उनकी देख रेख मेंटेनेंस कम हो जाती है और प्रदूषण भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पर रेवा एक जो कार थी वो बिजली द्वारा संचालित कार थी और आज बहुत सारे मोटर कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाना, ई रिक्शा भी आप देख रहे हैं बहुत चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा से हम कहते हैं, उससे भी प्रदूषण कम होता है और एनर्जी एफिशिएंट है। और जैसे मोटर के हैं तो टाटा ने, महिंद्रा ने और मारुति ने भी इलेक्ट्रिक कार्स निकाले हैं। और ऊर्जा की व्यय में भारी कटौती उन वाहनों के प्रयोग से की जाती है जिसमें ऐसे कुशाग्र इंजन हों जो कम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हों, या वे वाहन जो कि अपने जीवन काल के दौरान नवीकृत होने वाले ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग, यानी आप देखते हैं कि गैस के जो पेट्रोल और डीजल पर चल रही थी गाड़ियाँ वो अब सीएनजी पे भी चलती हैं, कार्स अगर देखें आप तो, और पेट्रोलियम की फ्लूइड की जगह पर हम बायोफ्यूल्स का प्रयोग कर रहे हैं और इस पर भारत सरकार बहुत ध्यान दे रही है। तो ये हमारा आज का ये पूरा होता है। तो हम थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। ऊर्जा को हम कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। ऊर्जा नवीकृत होने वाली और पुनः प्रयोग में लाई जाने वाली है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन और गैर पारंपरिक स्रोत हैं हमारे सूर्य, वायु, पानी, समुद्री लहरें, ज्वारीय, भूतापीय बायोमास। जैविक ईंधन को पौधे व उन पौधे से निकले हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये या तो बायोएथेनॉल के रूप में मिलते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसों के रूप में पाए जाते हैं। जट्रोफा, हीविया और कैलोफाइलम जैसे पौधों के जो बीज हैं उनसे बायोडीजल मिलता है। घरों में, कार्यालयों में कुछ अगर हम सावधानी बरतें तो हम ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भारत का जो बिजली के संरक्षण का कार्यक्रम है वो बहुत ही नियोजित है। भारत में LED, CFL और सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ऊर्जा संरक्षण विधेयक के अंतर्गत BEE भारत सरकार की एक एजेंसी है जो बिजली के उपकरण सोल यंत्रों की रेटिंग निर्धारित करती है। और ग्रीन हाउस गैसों के साथ साथ ऊर्जा संबंधी अपशिष्टों के में कमी के उद्देश्य से ऊर्जा कुशाग्र वाहनों का विकास किया जाता है। इस तरह से हमने आज ऊर्जा संरक्षण पर बात की। इस चर्चा को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।